Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, एक सवेरा ऐसा भी होता था जब हम मुस्कुराकर उठा करते थे, और आज तो शाम हो जाती है बिना मुस्कुराए। ऐसा क्यों हो गया है? क्या हम मुस्कुराना भूल गए हैं? क्या हम जिंदगी के सही मायने भूल गए हैं? साथ ही साथ जो सिचुएशंस है, क्या वो सभी मिलकर के हमें पूरी तरह से स्ट्रेस से ग्रसित कर रहे हैं, या इसके बाहर निकलने के भी कोई रास्ता है? वो रास्ता ढूंढने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल जी। ओम शांति।
ओम शांति।
वेलकम टू आवर शो।
नमस्ते
डॉक्टर साहब। पिछले एपिसोड में हमने ये जाना था, जो मैंने भी सीखा, कि सिचुएशंस जो है वो सब एक्चुअली में स्ट्रेस क्रिएट नहीं करते हैं, स्ट्रेस हम खुद क्रिएट करते हैं। पर इतना जो ये चर्चा में है ये बात, स्ट्रेस इस शब्द का सही मायना क्या है, ये हम जानना चाहते हैं।
नहीं, ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया, आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ
जी।
हेंसेल, वह एक कैनेडियन फिजियोलॉजिस्ट थे।
ओके।
जैसे ही उन्होंने अपनी मेडिकल स्टडीज की कर रहे थे, तभी उनके सामने अलग अलग प्रकार के पेशेंट्स आए
जी।
उसमें कुछ चीजें कॉमन थी ना, भल सब बीमार थे, वो बीमारी दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन थे। तो उससे उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी आई।
ओके।
ऐसी कोई चीज है कि जिसको हम ढूंढे, कि जो बीमारियां अलग अलग है लेकिन उसमें कुछ एक कॉमन फैक्टर भी है। फिर उन्होंने छोटी छोटी रिसर्च भी शुरू की।
ओके।
और बाद में जिसको कहा गया है जनरल एडप्टेशन सिंड्रोम, GAS।
ओके।
तो वह निर्माण हुआ, और जिसमें कहा गया कि भी जब भी बॉडी पर कोई प्रेशर आता है, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, और जब बॉडी उसको कोप नहीं कर पाती है, उन्होंने देखा कि एक स्पेसिफिक रिएक्शन सब में होता है, ऑलमोस्ट जनरल रिएक्शन। स्ट्रेस भल 5 प्रकार की हो, उन्होंने देखा कि सब में थायराइड ग्रंथि है उस पर इफेक्ट होती है, एड्रिनल पर इफेक्ट होती है, इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो उन्होंने ये बताया कि भी ऐसी रिएक्शन जिसमें भी आए, है ना, तो उसको हम स्ट्रेस कहेंगे।
डॉक्टर साहब, पर ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, ये शायद मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ, तो मेरी ऑडियंस कैसे समझेगी? तो कुछ सिंप्लीफाइड वे में अगर आप बता सके कि एग्जैक्टली स्ट्रेस है क्या।
वेरी ट्रू ट्रू। एक सिंपल सी चीज ऐसी है कि तनाव कोई भी अच्छी या बुरी घटना है कि जिसका आपके मन या शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
ओके।
यानी परफेक्टली आप देखेंगे तो वह अच्छी घटनाएं भी है, बुरी भी है। यही नहीं कि सिर्फ बुरी घटनाएं हैं। नहीं, फॉर एग्जाम्पल कि भी किसको 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, तो दैट इज ऑल्सो स्ट्रेस।
वो कैसे? क्योंकि ये तो खुशी की बात है, तो ये तो स्ट्रेस से कोई कनेक्शन नहीं है।
अच्छा अच्छा सर, देखो कॉमन है, शायद कईयों ने सुना भी होगा ये उदाहरण, बट इट्स इंटरेस्टिंग। कहते हैं कि एक बार एक गरीब व्यक्ति को, बहुत समय पहले की बात है, तभी 1 करोड़ रुपया तो बहुत होता था
जी,
है ना, मे बी 40-50 साल पहले, उसे 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। तो घर वालों को पता चला तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि इसको बताए कैसे।
ओके।
बेचारा वो तो 500 रुपया भी नहीं कमाता है। उसको जब मालूम पड़ेगा कि मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, तो ही शायद उससे एक हार्ट अटैक आ जाएगा
जी।
तो बोले उसको बताए कैसे, तो डॉक्टर के पास गए कि ये बात बड़ा प्रॉब्लम है, कैसे बोले उसको। तो डॉक्टर ने कहा बड़ा सिंपल है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, आप मेरे पास ले आना, मैं उसको इनडायरेक्टली बता दूंगा।
ठीक है।
जब उसके पास गया तो डॉक्टर ने उससे बात करना शुरू किया कि भैया अगर तुम्हारी 10,000 की लॉटरी लगे तो क्या करोगे? तो उसने कहा कि भाई मैं घर को रिनोवेट करूंगा, ये करूंगा। फिर और आगे पूछा कि भाई तुम्हारी 50,000 की लॉटरी लगे तो क्या करोगे? तो उसने कहा कि मैं बड़ी कार खरीद लूंगा। और पूछा कि तुम्हारी 2 लाख की लॉटरी लगे तो क्या करोगे? तो उसने कहा मैं बहुत बड़ा घर बना लूंगा, कहीं जमीन ले लूंगा। फिर ऐसे ऐसे करते पूछा कि तुम 1 करोड़ की लॉटरी लगे तो क्या करोगे। मैं, क्या डॉक्टर साहब बकवास कर रहे हो, कहीं मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगने वाली नहीं है, लेकिन चलो आप बोलते मैं मानता हूं, मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई तो आधा पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा। और डॉक्टर को हार्ट अटैक आ गया। $50 लाख उसी में उसको खुशी में भी व्यक्ति को आता है। देखो दूसरा एक बताओ सिंपल सा, नो दिस एवरीबॉडी विल एक्सेप्ट। आपने कई बार देखा होगा मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में जब फाइनल अनाउंसमेंट होता है, यू नो सो एंड सो इज मिस वर्ल्ड, आप हर बार देखो रोने लगती है।
करेक्ट,
सो दैट इज हैप्पीनेस एक्चुअली, ना कोई कहे कि हंसना चाहिए, बट दैट इज ऑल्सो स्ट्रेस, और उसको भी सही रूप से हमें मैनेज करना है। दूसरा देखो सिंपल सा उदाहरण बताता हूं कि जब क्रिकेट की मैच होती है और कहीं पर देखो लास्ट बॉल में अगर इंडिया जीत गया तो आपको दूसरे दिन न्यूज मिलते कि 2-3 लोगों को हार्ट अटैक है।
True.
क्योंकि ना वो एक्साइटमेंट इतना होता है कि जिसको भी वो बैलेंस वे में हैंडल नहीं कर पाते। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसलिए मैं कहता हूं कि तनाव कोई भी दुखद या सुखद घटना है कि जिसका हमारे मन या शरीर पर, हो सकता है कि शरीर पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है परंतु मन पर भी अगर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, मन भी आपका नेगेटिव बन रहा है, आप निराश हो रहे, एंग्शियस हो रहे, चिंता हो रही है, तो वह भी स्ट्रेस है वास्तव।
ओके, तो ये तो बहुत ही खूबसूरत आपने एग्जांपल दिया जिससे हम ये तो समझ गए कि स्ट्रेस से कहीं ना कहीं हमारी पूरी की पूरी मनोस्थिति पर उसका प्रभाव पड़ता है।
और किसको स्ट्रेस कर, ये डेफिनेशन मैंने क्यों बनाई, इसलिए कि अगर इतना सिंपल सी चीज भी हम याद रखे तो सारे दिन में बहुत सारी घटनाएं होती है
जी,
सिर्फ हमें इस बात से थोड़ा सजग होना है कि जो कुछ भी हो रहा है कहीं मुझे वो बुरी इफेक्ट हो रही है। जैसे सवेरे ट्रेन छूट गई, कुछ हुआ, छोटी सी बात से शुरू होता है कई बार, कि जो हमारे पास लोग आते हैं कि भी सवेरे व्यक्ति तैयार हुआ उसको अपने सॉक्स नहीं मिल रहे और वो टेंशन में आ जाता है।
छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बन गई।
और मतलब देखना ये कि जो कुछ भी छोटा बड़ा होता है कहीं पे भी वो नेगेटिव इम्पैक्ट है
जी।
कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट है तो सचमुच उसको स्ट्रेस समझो और फिर हमें उसके लिए सही कदम उठाने चाहिए
जी। तो लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ स्ट्रेस की, अब स्ट्रेस में भी आजकल ये यूथ में खास करके देखा गया है कि लोग कहते हैं ये मुझे गुड स्ट्रेस है। अभी गुड स्ट्रेस ये अपने आप में क्या टर्म है, अगर गुड स्ट्रेस है तो बैड स्ट्रेस भी है, तो इन दोनों की परिभाषा अगर आप हमें बता सके तो।
बहुत अच्छी बात है कि मैनेजमेंट सर्कल में इस बात को ज्यादा प्रसिद्धि मिली है कि गुड स्ट्रेस बैड स्ट्रेस, जैसे कहते कि यू स्ट्रेस वो अच्छा है
जी।
परंतु एक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में, है ना, डॉक्टर के रूप में जब मैं सोचता हूँ, एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि गुड स्ट्रेस या बैड स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि जो हम परिभाषा यूज करते हैं, वोकैबुलरी बड़ी इंपॉर्टेंट है।
Okay.
आप स्ट्रेस कहते तो स्ट्रेस वहां ही है। जो बात मैनेजमेंट एक्सपर्ट समझाते वह सही है, लेकिन वो परिभाषा मैं समझता हूं गलत है। जो आमतौर पर उदाहरण दिया जाता है कि एग्जाम से 8 महीने पहले स्टूडेंट बिल्कुल पढ़ते नहीं, कहो तो भी कहते मां नींद आती है।
Correct.
लेकिन एग्जाम के दिन वो 12 घंटे भी पढ़ता है,
नींद तो नहीं आएगी।
हाँ, क्योंकि कहाँ से इतनी कैपेसिटी आ गई, कहते हैं क्योंकि स्ट्रेस था। एग्जाम का स्ट्रेस था इसलिए वह पढ़ने लगा, जिसको कहा यू स्ट्रेस।
Correct.
लेकिन मैं सोचता हूँ वह कुछ भी नहीं।
Okay.
अभी यह भी सेम सिचुएशन कि भी एग्जाम के दिनों में यह मानते हैं कि 80% स्टूडेंट्स है वो खूब पढ़ते, नींद ही नहीं आती, लेकिन फिर भी 10-15% स्टूडेंट होते हैं कि जो उल्टा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लूज मोशन हो जाते हैं। एक पूरी एंटिटी है जिसको कहा है एग्जामिनेशन फीवर, कि कोई बैक्टीरिया वायरस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो एग्जाम का डर ही उनको बुखार निर्माण कर देता है, वॉमिटिंग ला देता है कई बार। तो यह है कि भाई उसको उन्होंने ठीक से अप्रोच नहीं किया।
ओके, उसे तो शायद बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी चीज मान लिया,
जिसने उसे सपोज कि भी एक चैलेंज के रूप में लिया, तो ही गॉट मोटिवेटेड। लेकिन जिसने उसको थ्रेट के रूप में लिया तो उल्टा उसमें ब्रेकडाउन हो गया,
करेक्ट,
और फिजिकल सिम्टम्स हो गए,
करेक्ट।
तो इसलिए बस जो परिवर्तन है इतना ही करने की जरूरत है कि गुड स्ट्रेस नहीं कहो, उसको कहो मोटिवेशन।
ओके,
लाइक फॉर एग्जांपल कि भी डेडलाइन आती है प्रोजेक्ट की, तो देन आप में मोटिवेशन बढ़ता है और फिर आप पूरा काम करते हैं,
करेक्ट।
तो उसको ये शब्द कह सकते कि मोटिवेशन अच्छा है परंतु स्ट्रेस बुरा है।
ओके,
एक पूरा ओरोथॉन्स ग्राफ बताया जाता है
जी,
जिसमें ऐसा कहते हैं कि भी जैसे जैसे भी स्ट्रेस बढ़ता है परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, जब और स्ट्रेस बढ़ता है तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है।
ओके, एक लेवल के बाद।
हाँ, बट वाधरण उसको स्ट्रेस कहो ही नहीं।
ओके,
मैं हमेशा ये समझाता हूं कि जब तक आप का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, आपकी कार्य क्षमता बढ़ रही है, वह एक प्रेरणा है, वह एक मोटिवेशन है। और जब वह मोटिवेशन तनाव का रूप ले लेता है तो आपका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है।
ओके,
सो नो वी शुड ऑलवेज से स्ट्रेस इज स्ट्रेस,
करेक्ट,
है ना। और एक हो भी आई वॉन्ट मोटिवेशन, और एक बहुत बड़ी अच्छी सी चीज है
जी,
कि डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन।
ओके,
मोटिवेशन कैन बी एक्सटर्नल,
करेक्ट,
कि फॉर एग्जांपल कि आप व्यक्ति की सैलरी बढ़ा दो तो 2 महीना वो अच्छे से काम करेगा, लेकिन फिर से उसकी को मोटिवेशन खत्म हो जाएगा,
करेक्ट।
परंतु अगर वो अंदर से मोटिवेटेड है,
इंस्पायर्ड
फ्रॉम, हाँ, इफ इज रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम विदिन,
करेक्ट,
then no, that will remain forever.
तो
हमें वर्क ये करना चाहिए कि नो वी अवर सेल्फ, हम अपने आप को इंस्पायर करें, हम औरों को भी इंस्पायर करें। एक्सटर्नल फैक्टर से सिर्फ मोटिवेट करना बेस्ट नहीं है,
अंदर से उसे अपने आप को महसूस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। अब मैं जानना चाहती हूँ कि स्ट्रेस किन प्रकार के लोगों को ज्यादा होता है, क्या एज ग्रुप पे डिपेंड करता है, क्या जेंडर पे डिपेंड करता है, किस चीज पर डिपेंड करता है?
ऐसे तो देखो ना तो कि भी बच्चे, अगर सही रूप से बच्चों को थोड़ा फ्रीडम दी जाए, आजकल तो बहुत बड़ी गलतियां हो रही है, अगर बच्चों को सचमुच बचपने में इंजॉय करने दिया जाए, फ्रीडम दी जाए, तो बच्चों को काफी कम स्ट्रेस होगा।
Okay.
है ना, आज एकदम छोटी आयु में उन पर इतना फोर्स आता है तो देयर आल्सो इट इज अ स्ट्रेस,
करेक्ट,
है ना। तो ऐसा देखेंगे तो भी बच्चों को स्ट्रेस कम होती है। फिर यूथ के बाद थोड़ा स्ट्रेस बढ़ता है।
okay.
और ओल्ड एज में वह ज्यादा ही ससेप्टिबल है।
okay.
लेकिन अब इसमें भी 2 फैक्टर है कि जो जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो अनुभव बढ़ता है, और अनुभव बढ़ता है तो विवेक आता है, विस्डम आती है
जी।
तो ओल्ड एज में अगर आपको विस्डम आई तो आपका तनाव कम होगा, और जहां विस्डम नहीं आई, आपने बोले बहुत भागा दौड़ी की, बहुत मेहनत की, कुछ बनाया कि या घर बना लिया, जो कुछ और एक्सटर्नली सब कुछ सोच लिया कि भी बच्चे सेटल हो गए, बच्चों की पढ़ाई हो गई, घर मेरा हो गया, मैंने फ्यूचर के पैसे का भी इंतजाम कर लिया, परंतु अगर विस्डम नहीं आई तो फिर ओल्ड एज में उल्टा स्ट्रेस बढ़ता है। क्यों
जी?
क्योंकि जवानी में तो आपका पूरा कंट्रोल था, सब कुछ आप कंट्रोल कर रहे थे, अभी ओल्ड एज में आप कितना भी करो वह कंट्रोल और किसी को देना पड़ता है,
करेक्ट,
सब चीजें आप निर्णय नहीं करते,
करेक्ट।
तब अगर सही विस्डम नहीं है तो ओल्ड एज में स्ट्रेस बढ़ जाती है।
ओके,
है ना, उल्टे प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं।
आप विस्डम की जो बात कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में आप बता सकते हैं?
क्या
विस्डम?
हाँ, नहीं इस पर भी आता हूँ, परंतु आपका जो पहला प्रश्न है ना उसको उसमें और थोड़ा, जैसे आपने कहा ना कि भी मेल फीमेल
जी,
अब दोनों प्रकार से ऐसे देखो तो भी फिजियोलॉजिकली फीमेल हैव अ मोर कैपेसिटी टू विदस्टैंड स्ट्रेस।
okay.
वो जो हॉर्मोन्स है वो इस प्रकार के कि वो ज्यादा उसको विस्टैंड कर सकती है.
okay.
परंतु फिर भी कई बार क्योंकि महिला इमोशनल भी है तो अगर वो इमोशंस को ठीक से मैनेज नहीं करती है तो स्ट्रेस बढ़ जाती है.
Correct.
और दूसरा ये भी एक स्टडी हुई है कि भी जो महिलाएं जॉब कर रही है और जो हाउसवाइफ है तो उसमें पाया गया कि जो हाउसवाइफ है वो कम काम कर रही है, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, प्रेशर कम है. और जो महिलाएं जॉब कर रही है उनको तो दो तीन काम सब करने हैं तो उन पर प्रेशर ज्यादा है. लेकिन फिर भी जो महिलाएं जॉब कर रही है उनको स्ट्रेस कम है.
अच्छा.
हमेशा ही पूछो भी तो क्यों
भैया क्यों
ये तो स्ट्रेस ज्यादा है.
एग्जैक्टली
है ना. परंतु उन महिलाओं को स्ट्रेस इसलिए कम है क्योंकि उनको होता है कि भी मेरे कंट्रोल में कुछ है.
okay.
मैं अपने आप कुछ इनकम कर सकती हूँ, मैं अपने निर्णय कर सकती हूँ, मैं अपनी रीति से पैसा खर्च कर सकती हूँ. तो हाउसवाइफ को यह होता है कि आई एम ट्रैप्ड, ऐसे नहीं मैं फंस गई हूँ, भी छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे मांगना पड़ता है किसी से. बट दिस डजंट मीन, नहीं अभी कोई इसको सुने तो कहेगा कि सभी जॉब करने लगो.
हाँ.
है ना, ये बात नहीं है. अभी यहाँ पर बात यह है कि एक तो ये होना चाहिए कि भाई थोड़ा तो इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए. ये भले दूसरा ही विषय है और कभी हम चर्चा करेंगे.
हाँ जी, हाँ जी.
लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि भी हर लड़की को माँ बाप को उसे एक बार तो उस तक तर सक्षम करना ही चाहिए कि भी वो कुछ अच्छा सा कमा सके.
Correct.
जितनी भी उसकी अपनी कैपेसिटी है. Correct. चाहे जरूरत नहीं भी है आगे चल के वो ना भी करे,
ना भी करे.
परंतु ये नहीं होना चाहिए कि मैं लाचार हूं अभी, आई कांट डू एनीथिंग.
करेक्ट.
तो फिर स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाएगा.
कहीं ना कहीं अंदर का एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो क्रिएट होने लगता है जब वो कमाने लगते हैं.
इवन दूसरा भी कि सेपरेशन से कई प्रॉब्लम्स आते हैं.
करेक्ट.
एक बात भी बहुत अच्छी समझने की जरूरी है कि भी हार्डवर्क स्ट्रेस नहीं है. आप बहुत काम कर रहे हैं, मैंने बहुत काम किया इसलिए मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, ऐसा नहीं है.
जी.
एक्चुअली स्ट्रेस इज बिकॉज ऑफ रिपीटेशन.
जी.
जब व्यक्ति अपने काम से डिससेटिस्फाइड है, वो डिस्टर्ब है, तब वह स्ट्रेस क्रिएट करता है.
ओके. तो स्ट्रेस की बात करें जब हम, तो स्ट्रेस में अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था विजडम, जिसे हम भूल चुके हैं. विजडम वो किस तरीके से जरूरी है, क्योंकि जो हमारे ओल्ड एज जो ऑडियंस है वो जानना चाहेंगे कि वो विजडम एग्जैक्टली है क्या.
क्या पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मैंने विजडम के बारे में बहुत अच्छा है, डिटेल में भी चर्चा कर सकते.
हाँ जी.
एक प्रसिद्ध कवि को किसी ने पूछा
जी
कि वेयर इज लाइफ, तो उन्होंने कहा कि वी हैव लॉस्ट इन विजडम.
ओके.
फिर कहा वेयर इज विजडम, वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज.
ओके.
वेयर इज नॉलेज, वी हैव लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन.
ओके.
आज जानकारी बहुत कुछ है, हमारे बच्चों को हमारे से भी बहुत ज्यादा जानकारी है, परंतु नॉलेज कम है.
okay.
और विजडम तो बिल्कुल नहीं है.
जी.
विजडम क्या कहेंगे कि एक प्रकार से एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग फॉर थिंग्स.
ओके.
है ना, कि जो ऑलवेज आपके थॉट पैटर्न्स को गवर्न करेगी, नहीं जो आपकी बिहेवियर को, आपकी फीलिंग्स को गवर्न करेगी.
जी.
नहीं, उसमें सिंपल सिंपल सी चीजें हो सकती है. जैसे एकदम तो सिंपल सी चीज तो यह है कि जो बाहर से दिखाई देता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है.
जी.
जो अंदर है वह इम्पोर्टेंट है.
ओके.
ये कई बार मैं उदाहरण देता हूं कि दो बॉक्स है.
जी.
एक आधा किलो चांदी का बॉक्स है, दूसरा आधा किलो सोने का बॉक्स है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है?
सोने की.
अभी देखो बाहर से देखा तो सोने की वैल्यू ज्यादा है. अभी दोनों को खोलो तो सोने के बॉक्स में पत्थर भरे हुए हैं और चांदी के बॉक्स में कीमती हीरे भरे हैं, तो विच इज मोर इम्पोर्टेंट?
चांदी.
ना?
जी.
सुनो, जब तक आप खोलते नहीं है मालूम नहीं पड़ता है.
बिल्कुल.
तो लाइकवाइज एवरीथिंग इन लाइफ, अनलेस वी अंडरस्टैंड द डीप मीनिंग ऑफ लाइफ, You can't decide properly.
Correct.
तो इसलिए एक तो ये विजडम होनी चाहिए कि जो बाहर बाहर दिखाई देता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है. है ना, जो अंदर में है वह इम्पोर्टेंट है. और बात कि ये सिंपल सी विस्डम आए कि भी टेम्पररी नहीं सोचना
जी।
वर्तमान समय हम स्ट्रेस की भी जो बात कर रहे हैं कि भी आज जिंदगी में प्रॉब्लम्स आए, कॉम्प्लिकेशंस आए, क्योंकि हमें ना उसको ऊपर ऊपर से ही देखते हैं।
करेक्ट।
गहराई से हम देख ही नहीं रहे। अगर इतनी भी विस्डम आ जाए कि कोई भी चीज को गहराई से देखना है ना, तो भी तनाव कम होगा। जो ओल्ड एज की आप बात कर रहे थे,
हाँ जी।
उस समय ये भी एक सिंपल सी विस्डम मैं कई बार बताता हूं कि जब सूर्यास्त हो रहा होता है तो सूर्य हिलता नहीं है, है ना। सूर्य टेंशन में नहीं आता, एंशियस नहीं होता, अरे क्या मैंने सारी दुनिया को प्रकाश दिया, मैंने इतना सब उजाला दिया, अभी मेरे अस्त होने का समय है। आप देखना सूर्य इतना आराम से अस्त होता है, उल्टे रंग बिरंगे किरणें बिखेरता है, हमें वो नजारा देखना अच्छा लगता है।
बिल्कुल।
द सेम वे इज अबाउट ओल्ड एज।
ओके।
अगर ओल्ड एज में व्यक्ति खुद समझे कि सब बल मैंने किया, बट नाउ इट्स अ टाइम टू डिटैच, नाउ आई हैव टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स
जी,
और भले ऑटोमेटिक भी कई बार तो हमने नहीं दी तो भी बच्चों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, वो निर्णय करने लगे, देन नो इफ यू आर गेटिंग योर बेसिक थिंग्स कंफर्टेबल आप है तो यू शुड डेवलप दिस विजडम कि अभी मुझे अंदर से विकास करना है।
ओके।
नाउ दिस इज अ टाइम कि भी जो भी आप पूर्व जन्म को मानते हैं या नहीं मानते, परंतु एटलीस्ट मुझे अपने आप को डेवलप तो करना ही है आगे।
जी बिल्कुल।
नो माय एंड शुड बी रियली पीसफुल।
लेकिन मुझे ये जानना था कि आप जब कह रहे हैं कि ओल्ड एज होम में आकर के हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है, तो क्या बाकी सब लोग हैं जो अब बाकी एज ग्रुप्स है, क्या उस वक्त इसकी जरूरत नहीं होती?
सबको जरूरत तो सबको है,
हाँ
सब ऐसे नहीं, ये तो सिर्फ जो ओल्ड एज में ज्यादा स्ट्रेस होता है जो बोलते हैं, क्योंकि वो विस्डम को धारण नहीं करते।
ओके।
दूसरा जो है कि भी वास्तव में ओल्ड एज में हमें ये समझना चाहिए कि ये ना मेरे पास सब अनुभव है
जी,
है ना, और वो अनुभव को जब जरूरत हो तब मैं यूज करूं।
ओके।
ये थोड़ा भी नहीं फील करूं, आज कई लोग आके रोते हैं कि वी आर निग्लेक्टेड, अभी हमें कोई पूछता ही नहीं है। अभी एक महिला आई थी, लोग वेल सेटल्ड, बहुत अच्छे इलाके में बॉम्बे में रहते, एवरीथिंग इज वंडरफुल। उसका स्ट्रेस ये है कि अभी मेरी बहू मुझे किचन में जाके काम करने नहीं देती है, बोलती है कि माँ जी तुम अपना आराम से रहो, करो मैं करूंगी। शी फील्स दैट आई डोंट हैव अ से इन किचन
जी।
तो मैंने उनको समझा कि तो बहुत अच्छा है, आपकी एज में तो उल्टा प्रेशर होता है, ये काम करो, ये नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, बहू जॉब कर रही है, ऐसे भी केसेस में नहीं, वो प्रैक्टिकली है कि भी वह मदर बच्चे के संभाल के लिए है, दूसरा कोई भी उसको इम्पोर्टेंस नहीं है। तो आपका तो उल्टा अच्छा है कि आप अभी इस टाइम जो है आप आराम से अपना कुछ इनर डेवलपमेंट करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, अच्छी किताबें पढ़ो, अपने जीवन के अनुभव लिखो, बहुत कुछ कर सकते हैं।
करेक्ट।
लेकिन व्यक्ति सोचता है वही मिलना चाहिए, मैंने वहां मैं कर रहा था वही मिलना चाहिए। एक्चुअली पूरा एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि जीवन का मतलब ही है परिवर्तन।
ओके।
और अभी 21वीं सदी में तो आप देखेंगे परिवर्तन फास्ट आएगा।
करेक्ट।
पहले शायद एक परिवर्तन कौन के 20 साल 30 लाख लगते थे, अभी देखना परिवर्तन फास्ट आएगा।
Correct.
आज जैसे हम जिसको स्मार्टफोन कहते हैं
जी,
आप देखना 15 साल के बाद वो स्मार्टफोन की कोई वैल्यू नहीं होगी। आईफोन के आगे भी और कुछ निकलेगा, ये स्मार्टफोन तो बेकार है। नो सो थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट।
करेक्ट।
एंड नो देन वी नीड टू अडॉप्ट टू इट।
बिल्कुल ठीक कहा आपने कि परिवर्तन ही सबसे बड़ा नियम है, और अगर हम परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आधे से ज्यादा स्ट्रेस हमारा वहीं खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। दोस्तों आज हमने क्या जाना, जब हम बात करते हैं स्ट्रेस की, स्ट्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो है, लेकिन उसका सोल्यूशन कहीं और नहीं, आप ही के अंदर है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि हमारा जो पर्सपेक्टिव रहता है उसके प्रति, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज़ को पॉजिटिवली लेकर के आगे बढ़ेंगे, सर्कमस्टांसेस को पॉजिटिवली देखेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि वो अपने आप में ही धीरे धीरे सारे सोल्यूशन आपको मिलते जाएंगे। लेकिन अगर आप रुक जाएंगे और हार कर वहीं पर हताश होकर बैठ जाएंगे, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।